काशी, क्या हुआ? बिस्तर पर लेटी कशिश को लगातार बेचैनी से इधर से उधर करवट लेते देख ईशान उठकर बैठ गया। आवाज सुनकर कशिश ने भी सर घुमाकर उसे देखा तो पाया कि ईशान चेहरे पर चिंता और फिक्र के भाव लिए परेशान निगाहों से उसे ही देख रहा था। पता नहीं, अजीब सी बेचैनी सी हो रही है, सोना चाहती हूँ पर किसी करवट चैन ही नहीं आ रहा, कशिश ने मायूसी भरे स्वर में जवाब दिया। ईशान कुछ पल परेशान सा उसे देखता रहा, फिर उसने बीच में सुई काशी को अपनी ओर खिसकाते हुए दूसरी ओर जगह बनाई और खुद उठकर कशिश के पास चलाया। कहीं दर्द हो रहा है तुम्हें? नहीं, बस बेचैनी और घबराहट सी हो रही है। आओ फिर उठो, कुछ देर के लिए बालकनी में चलते हैं, खुली हवा में बेहतर महसूस होगा तुम्हें। कशिश ने सर हिलाया और ईशान की हथेली को थामते हुए संभलकर बेड से नीचे उतर आई। ईशान आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए उसे लेकर बालकनी में आया और रेलिंग के पास खड़ा हो गया। रात का पहर, चंद्रमा की शीतलता चारों ओर बिखरी थी। आकाश भी चांद सितारों से सजी चादर ओढ़े गहरी नींद में सोया हुआ था। हल्की हल्की हवाएं चल रही थीं। पूरा बनारस नींद की आगोश में सिमटा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था जिसमें कुछ हल्की हल्की सी आवाजें गूंज रही थीं। गंगा की कलकल बहती धारा दूर से ही जैसे उन्हें पुकार रही थी। रेलिंग के पास खड़ी कशिश आंखें मूंदे सुकून को अपने दिल में उतार रही थी। रात का ये खूबसूरत मनमोहक नज़ारा नज़रों के रास्ते दिल की गहराइयों तक उतरने को बेताब था। एक ये हसीन रात, उस पर दिल भर का साथ। ईशान की निगाहें कशिश के चेहरे पर ठहरी थीं, जिस पर बिखरी चांदनी उसके रूप को निखार रही थी। अब बेहतर महसूस कर रही हो तुम? उस सन्नाटे में ईशान की आवाज़ गूंजी तो कशिश आंखें खोलकर उसे देखने लगी। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। कशिश के लबों पर सौम्य सी मुस्कान बिखर गई और उसके सुकून से भरे मुखड़े पर नज़र पड़ते ही ईशान के दिल में भी सुकून सा उतरा। कुछ देर दोनों यूं ही खड़े रहे, कशिश उस खूबसूरत नज़ारे को निहारती रही तो ईशान उसे, फिर वो उसे वापस अंदर ले आया। कशिश लेटी तो ईशान उसके पास बैठकर उसके बालों में उंगलियां घुमाने लगा और जल्दी ही कशिश नींद की आगोश में समा गई। ईशान ने झुककर उसके माथे को चूम लिया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। अगली सुबह कशिश की जब नींद खुली और नज़र घड़ी पर गई जो 10 बजा रही थी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हड़बड़ाकर उठने के चक्कर में पेट में तेज दर्द उठा और उसके थरथराते लबों से हल्की सी सिसकी निकल गई। आंखें खुद बखुद बंद हो गईं। चेहरे पर दर्द व तकलीफ के भाव लिए वो अपनी हथेली से धीरे धीरे अपने पेट को सहलाने लगी। दर्द कुछ हराम हुआ तो उसे कुछ राहत मिली। बेड से उतरने लगी, उसी वक्त ईशान ने रूम में कदम रखा और कशिश की नाराजगी भरी निगाहें उसकी ओर उठ गईं। आपने आज मुझे उठाया क्यों नहीं? कितना काम था और मैं बस सोती ही रह गई। अब जाकर उठी हूँ, अब तो सब आने भी वाले होंगे। मैं कब प्रसाद तैयार करूंगी और कब कन्याएं बिठाएंगे? कशिश अपने मोटे मोटे गालों को नाराजगी से फुलाए खफा खफा निगाहों से उसे देख रही थी, जबकि उसके मासूम से चेहरे पर नजर पड़ते ही ईशान के लबों पर मीठी सी मुस्कान उभर आई थी। तुम टेंशन मत लो, मैंने सब संभाल लिया है। सारा काम हो चुका है, बस पूड़ियां बनानी रह रही हैं, जो उसी वक्त गर्मा गर्म बना लेंगे। केशवी को भी तैयार कर दिया है मैंने, बस अब सब घर आएं, इससे पहले तुम तैयार हो जाओ। ईशान का जवाब सुनकर कशिश बुरी तरह से चौंक गई और आंखें फाड़े हैरान परेशान से उसे देखने लगी। आपने सब काम कर लिया? मतलब घर की सफाई, प्रसाद बनाना, सब कुछ कर लिया, वो भी अकेले? अकेले नहीं किया, मेरी बेटी मेरे साथ थी। असल में रात में तुम बहुत देर से सोई और थकी हुई भी लग रही थी, तो मुझे तुम्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं लगा, इसीलिए मैंने तुम्हें जगाने के जगह खुद ही सारा काम कर लिया, ताकि तुम आराम से अपनी नींद पूरी कर सको और तुम्हारे साथ साथ हमारे बच्चे को भी आराम मिल जाए। पर अब और आराम नहीं करना, इसीलिए अपना आलस छोड़ो और फटाफट से नहाकर तैयार हो जाओ, सब आने ही वाले होंगे। ईशान सी बातों में झलकते फिक्र को महसूस करते हुए कशिश ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। कुछ देर बाद वो ईशान के साथ नहाकर नीचे पहुंची तो नजर केशवी पर गई। केशवी लाल रंग का प्यारा सा शरारा पहने आंगन में मटकती घूम रही थी। खुले करली बाल, मासूमियत से भरा भोला सा क्यूट सा चेहरा, छोटी छोटी कलाइयों में सजी चूड़ियां और पैरों में पायजेब नेट के दुपट्टे से जमीन को साफ करते हुए। कभी वो अपनी बाहों को हिलाती तो कभी पैरों को। जब जब उसके हाथ में मौजूद चूड़ियां और पायल के घुंघरू शोर करते, उनके साथ ही नन्ही केशवी भी खिलखिला उठती। कशिश की नजर जब उस पर पड़ी तो पल भर को उसमें अपना अक्स नजर आया। ऐसी ही तो थी वो, बस उसे अपने बचपन और इन छोटे छोटे शौक को खुलकर पूरा करने का मौका नहीं मिला था, पर अपने पिता के राज में केशवी का बचपन खिल रहा था। है ना बिल्कुल तुम्हारी कार्बन कॉपी, जब से तैयार किया है ऐसे ही झूम रही है, और जब जब मेरी नजर उस पर पड़ती है मुझे उसमें तुम्हारा बचपन नजर आता है, जिसे मैं कभी खुलकर जी ही नहीं सकी अपने पापा के डर से। पर केशवी बहुत लकी है जो उसे आप जैसा पिता मिला है, और वो बिना किसी रोक टोक और पाबंदी के अपने बचपन को खुलकर जी रही है। कशिश ने उसकी बात पूरी की और ईशान की ओर नजरें घुमाते हुए फीका सा मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में अजीब सी शिकायत झलक रही थी। तो क्या तुम लकी नहीं कि तुम्हें मेरे जैसा पति मिला है? दायरे में बांधकर तो मैंने तुम्हें भी नहीं रखा। ईशान का ये सवाल सुनकर कशिश के लबों पर सच्ची मुस्कान बिखर गई। लकी हूँ ना, बहुत लकी हूँ, तभी तो अब किस्मत से कोई शिकायत नहीं मुझे, आपको पाकर मैंने सब पा लिया। कशिश का ये जवाब सुनकर ईशान हौले से मुस्कुराया और दोनों नीचे आए तो नन्ही केशवी खिलखिलाते हुए उनके पास चली आई। कशिश ने प्यार से उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरते हुए उसे पुचकारा, प्यार किया और अपनी आंख से काजल निकालकर उसे नजर का टीका भी लगा दिया। केशवी बेटा, पापा ने तो आपको बारबी क्लिप भी लगाई थी ना, वो कहाँ गिरा दिया आपने? ईशान ने केशवी के बिखरे बालों को संवारते हुए सवाल किया। नन्ही केशवी ने अपनी आंखें मटकाई और क्यूट सी शक्ल बना ली। वो तो खुद ही निकल कर गिर गई, आपने रखी कहाँ? लेकर आइए, पापा आपकी बार अच्छे से लगा देंगे। ये सुनना था कि केशवी नन्हे नन्हे कदमों से चौकी की ओर दौड़ गई। अपनी एड़ियां उचकाते हुए उसने हाथ बढ़ाकर वहां रखे क्लिप को उठाया और छमछम करती हुई वापस ईशान के पास आकर अपनी मुट्ठी बनी हथेली को खोल दिया। ईशान ने उसके बिखरे बालों को अपनी उंगलियों से संवारते हुए उसे क्लिप लगाई और उसके दुपट्टे को ठीक से कंधे पर रखते हुए उसके माथे को चूम लिया। दरवाजे पर दस्तक हुई तो केशवी चहकते हुए दरवाजा खोलने भाग गई और उसकी एक्साइटमेंट देखकर ईशान मुस्कुराते हुए उसके पीछे चला आया, क्योंकि गेट तो उसे ही खुलना था। दरवाजा खुला और दो लड़के केशवी से लिपट गए, साथ ही तीनों खुशी से चिल्लाने और खिलखिलाने लगे। ये थे कुणाल और स्वयं, जो ये 3-4 दिन केशवी के बिना बिता कर आए थे और उसे बहुत ज्यादा मिस भी कर रहे थे। कशिश और ईशान भी सबसे मिले। अपने दोनों भाइयों से मिलने के बाद केशवी अपनी नानी की गोद में चढ़ गई। बारी बारी उसने सबसे प्यार करवाया। केशु देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ, कुणाल ने जितनी एक्साइटमेंट के साथ ये कहा, उससे दुगनी एक्साइटमेंट के साथ केशवी रजनी की गोद से उतरकर उसकी ओर भागी। कुणाल ने प्यारी सी जूती उसके सामने रख दी, जिसे देखते ही केशवी खुशी से चहक उठी। इस जूती के लिए कुणाल ने पूरे मार्केट में घुमाया हमें, कितनी चीजें देखी, पर उसे केशवी के लिए कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। सरिता भाभी की बात सुनकर ईशान और कशिश उन्हें देखने लगे। इतने में एकाएक केशवी खुशी से चीखी और सभी चौंकते हुए उसे देखने लगे। स्वयं ने उसे खूबसूरत सी चूड़ियां गिफ्ट की थी और उसे ही लेकर केशवी खुशी से चहक उठी थी। उसका बचपना देखकर बाकी सब मुस्कुरा दिए। अब आप सब नहा धोकर फ्रेश हो जाइए, फिर कन्याओं को बुला लेंगे। सबने हामी भरी और अपने अपने कमरों में चले गए, जबकि तीनों बच्चों ने आंगन में हुड़दंग मचाया हुआ था।
कुछ देर में कन्याएं बिठाई गई, जिनमें सबसे आगे हमारी केशवी बैठी थी और मजे से हलवा पूड़ी और चने का भोग लगा रही थी, और उसके पास बैठा ईशान उसे खिला रहा था। दोनों लड़के भी वहीं बैठे थे और ईशान के हाथ से पेट पूजा करवा रहे थे। खाने के मामले में भी हूबहू कशिश पर गई थी केशवी, और अपने पापा को लेकर पोजेसिव भी बहुत थी। तभी तो जब ईशान कुणाल और स्वयं को खिलाने लगता तो नाराजगी से मुंह फुला लेती, उन दोनों को घूरने लगती और जब उसे खिलाता तो खुशी से चहक उठती। अपने भाइयों की लाडली थी वो, उनसे प्यार भी बहुत करती थी, पर सबसे ऊपर उसके पापा आते थे, जिसे किसी के भी साथ बांटना पसंद नहीं था उसे। कशिश को भी ईशान के पास देखकर ऐसे चिढ़ जाती जैसे ईशान पर उसका एकाधिकार है, इसलिए भी कभी कभी कशिश केशवी से खींच जाती थी, पर गई तो वो उसी पर थी। जानकी जी के साथ बैठी कशिश उन्हें देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी।